ಹರಿ
ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ.
ಹರಿನಾಮ ಹೋಗ, ಹರಿನಾಮ್ ಎಕ್ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಹೈ. ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಕಾ ಧಾಮ ಉಸೆ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಧಾಮ ಕಹತೆ ಹೈ, ಕ್ಯೂಂಕಿ ವಹಾಂ ಪರ್ ಸಬ್ ಕುಛ್ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಹೈ, ಮತಲಬ್ ಹಮಾರಿ ಇಚ್ಛಾಓಂ ಕೋ ಪೂರ್ಣ ಕರನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ ಸಮರ್ಥ ಹೈ. ಜೋ ಭಿ ಹಮಾರಿ ಇಚ್ಛಾಯೆ ಹೋತಿ ಹೈ ವೋ ಪೂರ್ಣ ಹೋ ಜಾತಿ ಹೈ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಕೋ ಪ್ರಾಪ್ತ ಕರನೆ ಕೆ ಬಾದ್. तो जिस तरह से वृंदावन धाम चिंतामणि है, जिस तरह से श्री कृष्ण स्वयं चिंतामणि है, हमारी कोई भी इच्छा पूरी कर सकते हैं, ठीक उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण का नाम भी चिंतामणि है. क्योंकि श्री कृष्ण में, उनके नाम में, उनके धाम में, उनके गुण में, उनकी लीला में, उनके यश में इत्यादि कोई अंतर नहीं है. तो अगर श्री कृष्ण का धाम और श्री कृष्ण स्वयं चिंतामणि है तो उनका नाम भी चिंतामणि है. और जो व्यक्ति बड़े श्रद्धा से जानता है, तत्वतः अटूट श्रद्धा से, कि केवल हरिनाम का आश्रय लेने मात्र से सारी सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं, वो व्यक्ति सबसे ऊंचा साधक माना जाता है. साधना भक्ति के पथ पर, भक्ति के तीन भाग होते हैं, तीन स्तर होते हैं, जैसा कि श्री रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में बताते हैं. पहला स्तर है साधना भक्ति, जिसमें साधक को, भक्त को साधना करनी पड़ती है. इसलिए यहां पर भक्त को साधक कहा जाता है, क्योंकि उसने सिद्धि प्राप्त नहीं कर ली है, अभी तक साध्य को प्राप्त नहीं किया है. साध्य और साधन, साध्य मतलब उद्देश्य, किस उद्देश्य की प्राप्ति हम करना चाहते हैं उसको साध्य कहते हैं. और साधन मतलब जिस माध्यम से या जिस चीज को स्वीकार करके हम उस उद्देश्य या साध्य की प्राप्ति करना चाहते हैं. तो साधन और साध्य, ये दोनों चीजें महत्वपूर्ण होती हैं. तो साधना भक्ति में भक्त एक साधक होता है और वह साधना का आश्रय लेता है, अलग अलग तरह के विधियों का है, नियमों का पालन करता है. साधना भक्ति के भी दो विभाजन होते हैं. पहला विभाजन होता है वैधि भक्ति और दूसरा है रागानुग भक्ति. वैधि भक्ति में, वैधि भक्ति में विधियों का पालन होता है. विधियों का पालन मतलब इसमें साधक को ज्यादा भक्ति में इतनी रुचि नहीं होती है, मन संसार में बार बार आकर्षित होते रहता है, लेकिन फिर भी आज्ञा का पालन करता है. क्योंकि एक दृष्टि से उसे मालूम है कि अगर मैं इन विधियों का पालन करते रहूं तो सिद्धि की प्राप्ति एक न एक दिन मैं कर पाऊंगा. तो हालांकि उतनी रुचि शायद नहीं होगी मन में, लेकिन फिर भी विधियों का पालन करता है, क्योंकि उसे बताया गया है, उसे मालूम है कि करना चाहिए, क्योंकि ऐसे करने से मेरी भलाई होगी. जैसे एक रोगी डॉक्टर की औषध लेता है, हालांकि उसे औषध लेना अच्छा नहीं लगता, लेकिन उसे पता है कि लूंगा तो मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी. इसी तरह से जो वैधि भक्त होता है वो अनेक नियमों का पालन करता है. उसके स्तर के लिए ये नियम आवश्यक होते हैं, सीधे वो भगवान की शुद्ध भक्ति में नहीं पहुंच सकता है. जैसे हम लोग चार नियमों का पालन करते हैं, हमें बताया जाता है, होटल में मत जाओ, टीवी मत देखो, कांदा लहसुन मत खाओ, ये मत करो, वो मत करो, 16 माला जप करो, सुबह जल्दी उठो, रात को जल्दी सो जाओ, ग्रंथ रोज पढ़ो, अभक्तों का संग त्याग करो, भक्तों के संग में आओ, तुलसी की पूजा करो, भगवान के धाम में यात्रा करो, ऐसे कई विधि विधान हैं। तो उनका पालन साधक करता है, कभी कभी उसको उत्साह होता है, कभी नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो करता है। ये वैधि भक्ति। और फिर जब वो प्रगति करता है, प्रगति करते करते जब उसको थोड़ा बहुत रस आने लगता है भक्ति में, फिर स्वाभाविक तौर से इन्हीं विधियों का पालन करता है। वो साधना करते रहता है, जो भी नियम है उनका पालन करते रहता है, जैसे सुबह मंगल आरती को उठना या जप करना, ग्रंथों का अध्ययन करना, ये सब करता है। लेकिन राधानुग भक्ति के स्तर में वो स्वाभाविक तौर से करता है। वैदिक भक्ति में थोड़ा बहुत दूसरों को जोर लगाना पड़ता है, अरे जप में क्यों सो रहे हो, अरे उठो, अरे जल्दी आओ, हाँ किताब पढ़ो, किताब पढ़ते समय सो मत, अच्छी तरह से सेवा करो, हाँ। तो ऐसे बहुत भक्त को, साधक को बताना पड़ता है वैधि के शुरुआत के स्तर में। अगर दूसरे कोई नहीं बताए तो कम से कम अपने बुद्धि को, अपने आप को बताना पड़ता है। तो बुद्धि से भक्त अपने आप को समझा देता है कि नहीं नहीं मुझे पालन करना चाहिए, करना चाहिए, करना चाहिए। हालांकि मन कहता है नहीं नहीं सो जाओ सो जाओ, बुद्धि कहती है नहीं नहीं करो करो करो। तो चाहे दूसरों के उपदेश से या अपने बुद्धि के उपदेश से, जबरदस्ती से साधक विधियों का पालन करता है एक स्तर में। लेकिन रागानुग भक्ति के स्तर में स्वाभाविक तौर से इन नियमों का पालन होता है। उसे इतना रस आता है, इतना अच्छा लगता है कि खुद ब खुद वो सुबह उठ जाता है, सोचता है कि कब सुबह आएगा, कब मैं हरि नाम लेने के लिए बैठूंगा, कब मैं ग्रंथ लेकर बैठूंगा, कब मैं हरि नाम में मग्न हो जाऊंगा, कब कीर्तन आएगा कि मैं भाग ले लूं और उसमें मैं मग्न हो जाऊं। तो इस तरह से स्वाभाविक तौर से एक आकर्षण रहता है, जिससे विधियों का पालन होते रहता है। तो ये साधना भक्ति है। इसके बाद आता है भाव भक्ति। तो भाव भक्ति में रागानुग भक्ति की परिपूर्णता होती है। ये मतलब भक्ति के लक्षण प्रकट होने लगते हैं, आंसू आते हैं, शरीर में कंपन होता है, बहुत सारे लक्षण हैं भक्ति के, इनकी नकल नहीं की जा सकती और नहीं हमें करना चाहिए। ये भी बहुत ऊंचा स्तर है भक्ति का। और फिर उसके बाद आता है प्रेमा भक्ति। प्रेमा भक्ति हमारा सच्चा प्रयोजन है, हमारा सच्चा उद्देश्य, हमारा साध्य। हम जो भी कुछ कर रहे हैं इस भक्ति मार्ग में केवल इसलिए है कि हम इस शुद्ध प्रेमा भक्ति को हम प्राप्त करें। ये हमारे जीवन का उद्देश्य है। लेकिन ऐसा नहीं कि एक बार प्रेमा भक्ति प्राप्त कर ली और फिर हम बैठ गए, नहीं, क्योंकि हम रागानुग भक्ति, भाव भक्ति से भी ऊपर बढ़ चुके हैं। बहुत नीचे रागानुग भक्ति के स्तर में भी स्वाभाविक आकर्षण होता है, तो प्रेमा भक्ति में कितना ये और ज्यादा तीव्र बन जाएगा आकर्षण। तो प्रेमा भक्ति के स्तर में भक्त पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है, हृदय से कोई अनर्थ रहते नहीं है, और उसकी भक्ति, उसका प्रेम जो है भगवान के प्रति, वो निर्मल होता है, उसमें कोई मिश्रण नहीं होता है। तो ये तीन स्तर होते हैं, याद रखेंगे सब, साधना भक्ति, भाव भक्ति, प्रेमा भक्ति। और साधना भक्ति के दो विभाजन, वैधि भक्ति और रागानुग भक्ति। तो भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं कि जब साधना भक्ति कर रहे होते हैं, जो साधक होता है, भले उस साधक को नाम में इतनी रुचि नहीं आई हो, लेकिन उस साधक को अगर अटूट पूर्ण विश्वास है कि केवल भगवान श्री कृष्ण के नाम का आश्रय लेने मात्र से सारी सिद्धि की प्राप्ति हो सकती है, तो वो सबसे ऊंचा साधक कहलाता है। ये श्रद्धा चाहिए। लेकिन चैतन्य चरितामृत में भी श्रद्धा शब्द की परिभाषा दी हुई है, श्रद्धा शब्द विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय
कृष्ण भक्ति कोयले सर्व कर्म कृत होए। चैतन्य महाप्रभु बताते हैं श्रद्धा मतलब क्या है, वो सुदृढ़ विश्वास, वो निश्चय कि केवल अगर हम श्री कृष्ण की भक्ति करेंगे, उनकी सेवा करेंगे तो सारी सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। कृष्ण की भक्ति करना मतलब कृष्ण का नाम लेना, क्योंकि कृष्ण भक्ति का प्राण है हरि नाम। वैसे हरि नाम के लिए, भक्ति के लिए या भगवान की उपासना करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, पद्धतियां हैं, मार्ग हैं, अलग अलग तरह के तपस्या हैं, विधि विधान हैं, नियम हैं, लेकिन इनमें से सबसे प्रमुख है भगवान का नाम लेना, जप करना, कीर्तन करना। जब हम अपने आप करते हैं, अकेले में करते हैं, इसको जप कहते हैं, वाद्य के साथ कहते हैं, इसको कीर्तन कहते हैं। तो भगवान का नाम लेना यही सबसे प्रमुख मार्ग है भगवान की उपासना करने के लिए, परम सत्य को जानने के लिए। तो इस तरह से यह हरि नाम खास करके भक्तों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस ग्रंथ में हरिनाम चिंतामणि में हरिदास ठाकुर और चैतन्य महाप्रभु के बीच में जो संवाद है वो हरिनाम के ऊपर है, हरिनाम की महिमा। चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर के माध्यम से हरिनाम के महात्म्य या उसका गौरव का वर्णन कराया है। चैतन्य महाप्रभु के लीलाओं में कई विशेषताएं हैं, उनमें से एक विशेषता यह है कि चैतन्य महाप्रभु अनेक तरह के उपदेश अपने भक्तों के माध्यम से वो दुनिया को देना चाहते थे, क्योंकि वो अपने भक्तों का गौरव कराना चाहते थे। ये भगवान का स्वभाव होता है कि भगवान हमेशा अपने भक्त को प्रसिद्ध बनाना चाहते हैं, अपने भक्त का गुणगान कराना चाहते हैं, अपने भक्त का यश बढ़ाना चाहते हैं। जैसे कुरुक्षेत्र के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कह दिया कि हे अर्जुन, निमित्त मात्र भव सव्यसाची, कि तुम केवल निमित्त बनो, मेरा निमित्त बनो। वैसे तो मैंने इन सब को मार ही डाला है बहुत पहले से, इनकी मृत्यु निश्चित है, लेकिन फिर भी तुम मेरा यंत्र बनो और तुम युद्ध करके यश प्राप्त कर लो, तो युद्ध जीतने का श्रेय ये तुम्हें जाएगा। वास्तव में श्रेय भगवान श्री कृष्ण का था, अर्जुन को भी शक्ति उन्होंने ही दी थी, अर्जुन को देना चाहते थे। ये भगवान की खूबी है। ये संसार में हम देखते हैं कि अगर हम कुछ करते हैं तो हम उसका श्रेय भी चाहते हैं, और अगर हमारे किए हुए कार्य के बारे में श्रेय कोई और लेता है, दूसरे व्यक्ति को वाहवा मिलती है, तो हमें बहुत बुरा लगता है ना। लेकिन भगवान का स्वभाव देखिए, भगवान अपने भक्तों का गुणगान कराना चाहते हैं और जानबूझ के इस तरह से व्यवस्था करते हैं कि श्रेय भक्त को मिले। और भक्त के भी ऐसे ही गुण होते हैं भगवान के संपर्क में आने से, और भक्त भी हर चीज के लिए श्रेय भगवान को देता है, और कुछ भी वो हासिल कर लेता है, सफलता प्राप्त कर लेता है, कहता है मेरे अंदर जो भी अच्छे गुण है, जो भी कुछ मैं कर पा रहा हूं, केवल भगवान की कृपा से कर पा रहा हूं, वो तो भगवान ही कर रहे हैं, मैं तो केवल निमित्त हूं। इस तरह से भक्त भगवान को श्रेय देता। इस तरह से ये भक्ति का मार्ग कितना सुंदर है, भक्त और भगवान के बीच में इस तरह से एक स्पर्धा चलती है, एक दूसरे को श्रेय देना, एक दूसरे का यश बढ़ाने का प्रयास करना। तो ठीक उसी तरह से चैतन्य महाप्रभु जो कि स्वयं श्री कृष्ण हैं, वो भी अपने भक्तों का गौरव कराना चाहते थे, तो उन्होंने अलग अलग भक्तों के मुखारविंद से अलग अलग विषयों के बारे में सारे दुनिया के लिए व्याख्या दी, और खास करके जो भक्त किसी एक भक्ति के विशेष क्षेत्र में विशेष करके निपुण थे, तो उनके माध्यम से उस भक्ति के अंग के बारे में उन्होंने जानकारी दुनिया को दी। हम देखते हैं कि भक्ति के कितने सारे अंग होते हैं, और हरेक भक्त हरेक अंग में शायद निपुण हो। किसी को कीर्तन आता है, लेकिन हो सकता है कि भगवान के लिए रसोई बनाना नहीं आता। किसी को रसोई बनाना आता है, लेकिन उसको भगवान का श्रृंगार करने नहीं आता है, पूजा पाठ नहीं, पूजा नहीं मालूम है, अर्चना विधि नहीं मालूम। किसी को अर्चना विधि मालूम है, लेकिन शास्त्र में रुचि नहीं है। कोई शास्त्र में रुचि रखता है, लेकिन जप अच्छा नहीं करता है। तो किसी न किसी तरह से हो सकता है कि सभी लोग भक्ति के सभी अंगों में श्रेष्ठ नहीं है। प्रभुपाद जी ऑलराउंडर थे, भक्ति के हरेक क्षेत्र में निपुण थे। भक्ति का ऐसा कोई कार्य नहीं था जो वो नहीं करते थे। और जब वो अमेरिका गए, तब से उनको खुद अकेले ये आंदोलन को संभालना पड़ा। अभी हमारे मंदिरों में कितने सारे भक्त हैं, एक टीम प्रसाद बनाने जाएगी, एक टीम भगवान की श्रृंगार करने जाएगी, एक टीम इधर मंदिर के सफाई में, तो अलग अलग भक्त अपने अपने काम करते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी को सब कुछ करना पड़ा शुरुआत में। वो पहले खुद कमरा वगैरह साफ करते थे, झाड़ू लगाते थे, अपने कपड़े धोते थे, और फिर खुद पकाते थे, क्योंकि ये सब फीस्ट में प्रवचन कीर्तन के लिए लोग आए ना करते थे, तो किसी को पकाना नहीं, कोई शुद्ध नहीं था पकाने के लिए, तो वो खुद पकाते थे। कभी कचौड़ी बनाते थे, कभी जलेबी, कभी गुलाब जामुन, और जो भी आते थे सत्संग में उनको बांटते थे। फिर खुद कीर्तन करते थे, खुद प्रवचन देते थे, खुद आरती करते थे, खुद टाइपिंग करते थे, खुद लिखते थे, सब कुछ खुद करते थे। सब कुछ मालूम था, मृदंग बजाना आता था, करताल बजाना आता था, कीर्तन गाना आता था। ऐसी कोई कला नहीं थी। कविता लिखते थे, भजन लिखते थे, पुस्तक लिखने में भी निपुण, प्रवचन देने में निपुण, हर क्षेत्र में निपुण। सनातन गोस्वामी ने हरिदास ठाकुर की महिमा भी इसी तरह से की थी। उन्होंने कहा कि थोड़े लोग ऐसे होते हैं जिनको शास्त्रों का ज्ञान अच्छा होता है, लेकिन प्रचार नहीं कर पाते हैं, या प्रचार करते हैं तो उनका आचरण ठीक नहीं होता। थोड़े लोग होते हैं आचरण ठीक है लेकिन प्रचार नहीं कर पाते। लेकिन आप दोनों आदर्श तरीके से करते हैं। आपका आचार भी सही है, परिपूर्ण है, और आपका प्रचार है वो भी बिल्कुल परिपूर्ण है। आचार और प्रचार दोनों ठीक है, और वास्तव में ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अगर हम प्रचार कर रहे हैं और हमारा आचार ठीक नहीं रहा, तो फिर हमारे प्रचार की कोई कीमत नहीं है, हमारे प्रचार का कोई असर नहीं पड़ेगा लोगों के ऊपर। केवल हम बोलेंगे, लेकिन लोगों का हृदय परिवर्तित नहीं होगा। इसलिए हमारा आचरण ये हमारे शब्दों से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। एक छोटा सा कार्य हमारे इतने सारे शब्दों को नष्ट कर सकता है, या एक छोटा सा शब्द, एक छोटा सा कार्य करने से हो सकता है कि हजारों शब्द कहने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे इस छोटे से कार्य से लोगों का हृदय इतना परिवर्तित हो जाता है कि वो भगवान की भक्ति में स्थिर रह जाते हैं। प्रभुपाद जी और जो महान वैष्णव होते हैं वो अपने जीवनी से दिखाते हैं कि हर छोटे कार्य में कैसे बहुत ध्यान से अपने आप को पेश करना, ताकि लोगों के हृदय में भक्ति भावना अधिक से अधिक सुदृढ़ होती रहे। ऐसे कभी वो व्यवहार नहीं करते हैं जिससे कि लोगों की श्रद्धा टूट जाए। इसलिए वैष्णव प्रचारक को चाहिए कि उसका आचरण ठीक हो, तब प्रचार ठीक होगा। और आचरण ठीक रखने के लिए विचार ठीक होना चाहिए। विचार मतलब जो वृत्ति है, जो दृष्टिकोण है वो भी ठीक रहना चाहिए। तो हरिदास ठाकुर में ये सारे गुण पाए जाते थे, इसलिए हरिदास ठाकुर के माध्यम से चैतन्य महाप्रभु ने हरिनाम की महिमा कहलवाई, हरिनाम का महात्म्य कहलवाया। हरिनाम कितना महान है, हरिनाम लेने से क्या फायदा है, हरिनाम के गुण क्या है, हरिनाम का तत्व क्या है, ये सारे चीजें हरिदास ठाकुर के माध्यम से उन्होंने कराए। इसलिए उन्होंने हरिदास ठाकुर को पदवी दे दी नामाचार्य। आचार्य मतलब क्या है, आचार्य मतलब जो अपने आचार से सिखाता है, आचरण से, इसलिए आचार्य। केवल प्रचार नहीं, उनको आचार्य कहते हैं। आचार्य मतलब जो इस तरह से आचरण करता है, तत्व का आचरण अपने जीवन में बड़े सही ढंग से करता है, फिर जो भी शब्द वो बोलता है वो शब्द बहुत शक्तिशाली हो जाता है, उसमें ताकत आ जाती है दूसरों के अनर्थों को नष्ट करने के लिए, उनके हृदय में श्री कृष्ण के प्रति आकर्षण उत्पन्न करने के लिए। जिस तरह से चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर को एक यंत्र बनाया, निमित्त बनाया, उसी तरह से उन्होंने अलग अलग भक्तों को अलग अलग विषय के लिए प्रचार करने के लिए निमित्त बनाया। जब चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत गए थे यात्रा में संन्यास लेने के तुरंत बाद, तो गोदावरी राय से भेंट की। रामानंद राय वास्तव में भगवान के महान भक्त थे और पहले से ही सार्वभौम भट्टाचार्य ने चैतन्य महाप्रभु को रामानंद राय के बारे में बतलाया था कि ये बहुत महान वैष्णव है और कृष्ण भक्ति के सूक्ष्म से सूक्ष्म और घने से घने जो ये गुड़ से गुड़ तत्वों को वो जानते हैं, तो आप जब दक्षिण में जाएंगे अवश्य इनके पास जाना। जब चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय से कई प्रश्न किए थे, इनमें से थोड़े प्रश्न हमने राधाष्टमी के दिवस पर सुबह चर्चा की थी, तो उस समय चैतन्य महाप्रभु ने कहा रामानंद राय से, मैं तो एक मायावादी सन्यासी हूं, मुझे क्या मालूम, मैंने तो केवल सार्वभौम भट्टाचार्य से सुना क्योंकि वो मेरे ऊपर बहुत कृपा करते हैं और मेरे हित के लिए उन्हें मुझे बताया उन्होंने कि जाके रामानंद राय से मिलो, क्योंकि रामानंद राय के पास सारे भक्ति के गुण तत्व उनके हृदय में है, वो सब कुछ आपको बता पाएंगे कृष्ण के बारे में और कृष्ण भक्ति के बारे में। तो रामानंद राय के माध्यम से चैतन्य महाप्रभु ने भगवान श्री कृष्ण के माधुर्य रस का आदान प्रदान कैसे होता है उसके बारे में सुना। यह बहुत ऊंचा विषय है, सरल नहीं है समझना। राधाष्टमी के दिन सुबह हम चर्चा कर रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु ने प्रश्न किए रामानंद राय से, पौड़ो श्लोक साध्य निर्णय, साध्य फिर से यह शब्द आता है, साध्य, साध्य का निर्णय क्या है, मतलब जीवन का अंतिम उद्देश्य हमारा क्या है। फिर रामानंद राय ने कई तरह के उत्तर दिए। उन्होंने पहले बताया स्वधर्म आचरण करना चाहिए अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार, फिर उन्होंने बताया कि कृष्ण कर्म अर्पण करना चाहिए, कृष्ण कर्मार्पण है। जब महाप्रभु ने वो भी नकार दिया एहो बाह्य कहकर, तो उन्होंने कहा स्वधर्म त्याग, सर्वधर्मान परित्यज्य श्लोक बताया उन्होंने, और फिर जब इसको भी बाह्य कह दिया महाप्रभु ने, तो फिर रामानंद राय ने ज्ञान मिश्र भक्ति का पथ बतलाया, वो भी महाप्रभु ने काट दिया, ज्ञान शून्य भक्ति का मार्ग बतलाया, और श्रवण कीर्तन ऐसे अवस्था में करना भगवान कृष्ण के बारे में चैतन्य महाप्रभु ने हां तो कह दिया, लेकिन और आगे 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 उनको बढ़ाते गए। फिर वो प्रेमा भक्ति के स्तर पे आए, फिर अलग अलग रसों में आए, दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस। माधुर्य रस मतलब गोपियों और श्री कृष्ण के बीच में जो प्रेम है, भक्ति है, और आगे 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 और ले जाकर राधा रानी का प्रेम जो है श्री कृष्ण के प्रति वो कितना विशेष है और किस तरह से श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी के भक्ति से बंधे हुए हैं, इसके बारे में बड़े विस्तार में रामानंद राय ने चैतन्य महाप्रभु सुनाया। और भी आगे गहराई में भक्ति के इस माधुर रस के सागर में चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय को लेते गए, ले जाते गए, और हर बार रामानंद राय आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि इससे भी आगे प्रश्न, इससे भी आगे, इससे भी ऊंचा, और फिर उसका उत्तर देते खुद। और बीच बीच में रामानंद राय ऐसे कुछ बोलते कि वैसे मुझे कुछ पता नहीं है कि मैं जो बोल रहा हूं वो अच्छा है कि नहीं है, मैं तो केवल एक तोते के समान हूं, जो आप मेरे माध्यम से बुलवा रहे हैं मैं वही हूं, और आपने मुझे प्रेरणा दी है हृदय में, और इस हृदय की प्रेरणा आने की वजह से मेरा जीवा बोल रहा है, जीवा क्या बोल रहा है मुझे नहीं मालूम, मैं तो एक ऐसा संगीत का वाद्य हूं जिसके वो तार रहता है, और आप वो संगीतकार हैं जो कि तार को बजा रहे हैं, और जैसे आप बजाते हैं मैं बजता हूं, मतलब जैसे आप मन में इच्छा करते हैं, आप टोंग 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 करके आवाज करते हैं, वो मेरे मुंह से वो शब्द निकलता है, इसलिए मैं तो एक कठपुतली हूं और आप कठपुतली को नचाने वाले हैं, जिस तरह से आप नचा रहे हैं मुझे, मैं नाच रहा हूं, मुझे कुछ नहीं मालूम कि ये सब क्या है, कैसे चल रहा है, मैं क्या बोल रहा हूं, सही बोल रहा हूं, नहीं बोल रहा हूं, मुझे भी आश्चर्य हो रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूं। और फिर आगे चल के रामानंद राय उनसे कहते हैं कि देखो एक बड़ा रहस्य है, आप मुझे इतने सारे प्रश्न पूछ रहे हैं, ऊपर ऊंचा 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 ले जा रहे हैं तत्व में, तत्व ज्ञान में, और मुझे कुछ पता नहीं चल रहा, ना आपके प्रश्न समझ में आ रहे ना उत्तर, लेकिन मैं बोले जा रहा हूं, लेकिन सबसे बड़ा रहस्य इस बारे में यह है कि मेरे मुंह के माध्यम से आप बोल रहे हैं तो वक्ता आप हैं और श्रोता भी आप हैं, बोलने वाले भी आप, सुनने वाले भी आप, लेकिन केवल मेरे को आपने निमित्त बनाया है, एक माध्यम बनाया है। इस तरह रामानंद राय ने बीच बीच में चैतन्य महाप्रभु का गुणगान किया। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु ने अपने भक्तों को प्रश्न किए अलग अलग तत्व के बारे में, और फिर उनके माध्यम से वो बोले, ताकि आगे चल के पीढ़ियां मान ले कि देखो रामानंद राय कितने महान हैं, माधुर रस के सारे जो सूक्ष्म तत्व हैं उनको मालूम है, और चैतन्य महाप्रभु ने एक शिष्य के बराबर उनके साथ बैठकर उन्हीं से ये सब बातें सुन ली हैं। तो भगवान कितने नम्र होते हैं, देखिए खुद अपने भक्त को अपने गुरु जैसे मानकर उनसे ही उपदेश ग्रहण करते हैं। ज्ञान देने वाले तो वही हैं, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि मैं सब प्राणियों के हृदय में विराजमान हूं, और हृदय में रहकर मैं सभी को ज्ञान देता हूं, विस्मृति देता हूं और स्मृति देता हूं। तो जो भी भक्त बोल रहे हैं उनको बुद्धि क्षमता भगवान ही देते हैं, लेकिन फिर भी नम्रता क्या है वो सिखलाते हैं, और अपने भक्तों से ही उनके सामने बैठकर वो प्रश्न करते हैं और उनसे सुनते हैं। और इस प्रकार से सारे जगत को इन तत्वों का वो तत्वों को विस्तृत करते हैं, ये तत्व का प्रचार करते हैं अपने भक्तों के माध्यम से, हालांकि वो अकेला कर सकते हैं। जैसा कि कई बार भक्त प्रश्न पूछते हैं कि अगर चैतन्य महाप्रभु को पृथ्वी ते जत नगर अधिग्राम सर्वत्र हो प्रचार हो मोर नाम, ये भविष्यवाणी की थी कि हरेक नगर गांव में मेरा नाम गूंजेगा, तो चैतन्य महाप्रभु ने खुद नहीं क्यों किया, खुद करना चाहिए था ना, आए तो भगवान है तो एक क्षण में सबको भक्त बना सकते थे, तो उनको क्यों नहीं बनाया, क्योंकि वो थोड़ा काम अपने भक्तों के लिए छोड़ना चाहते थे, भक्तों को सेवा देना चाहते थे, उन्होंने सब काम कर दिया तो भक्तों को क्या काम रह जाएगा, भक्त लोग ऐसे ही बैठेंगे उनके लिए कुछ सेवा नहीं होगा, तो उन्होंने आने वाले पीढ़ियों के लिए उनके भक्तों के लिए बहुत सारी सेवा छोड़ दी है। और फिर आने वाले आचार्य आए, फिर भक्ति विनोद ठाकुर आए, फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उन्होंने 64 गौड़ी मठ इनकी स्थापना की। फिर श्रील प्रभुपाद जी आए, भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, उन्होंने इस्कॉन की स्थापना की, 108 मंदिर बनाए उन्होंने गोलोक धाम जाने के पहले, केवल 12 साल में। हर एक विश्व के हर एक देश में जाकर उन्होंने प्रवचन दिए, उनके भक्तों ने हर एक देश में जाकर पुस्तक वितरण किए, रथ यात्रा किए, नगर संकीर्तन किया, प्रचार किया। तो अभी भी बहुत कुछ है। प्रभुपाद जी ने हम सबके लिए बहुत कुछ छोड़ा है। प्रभुपाद जी बेलगाम में नहीं आए थे, उन्होंने सोचा हाँ चलो अभी थोड़े भक्त आने वाले हैं बेलगाम में, उनके लिए सेवा है, उनको प्रचार करना चाहिए। तो इस तरह से भगवान ने अपने भक्तों के लिए बहुत कुछ सेवा छोड़ी है। तो चैतन्य महाप्रभु ने जिस तरह से रामानंद राय के मुख से माधुरी रस की महिमा का वर्णन सुनवाया और सुना, ठीक उसी तरह से उन्होंने सार्वभौम भट्टाचार्य के मुख से मुक्ति का तत्व सुना और सारे जगत को सुनाया मुक्ति क्या चीज है। अब आपको मालूम है कि सार्वभौम भट्टाचार्य ये पहले एक मायावादी थे। हमें याद रखना चाहिए कि जब चैतन्य महाप्रभु ने अपने भक्तों के माध्यम से ये सारे तत्व बुलवाए, इसका मतलब है कि वो जानते थे कि इस क्षेत्र में ये भक्त निपुण है, तो उसके माध्यम से उसे वही विषय निकलवाया। इसलिए सार्वभौम भट्टाचार्य ये पहले मायावादी थे, हमेशा मुक्ति की बात करते थे, मोक्ष की बात करते थे, और अभी वो भक्त बन गए चैतन्य महाप्रभु की कृपा से। तो सच्चा मुक्ति क्या है वो सार्वभौम भट्टाचार्य के मुख से सुनना चाहते थे। और जब उन्होंने सार्वभौम भट्टाचार्य ने सार चैतन्य महाप्रभु को वेदांत सुनाया इस उद्देश्य से कि चैतन्य महाप्रभु एक नवयुवक सुंदर सन्यासी हैं और उनको संशय था कि ये चैतन्य महाप्रभु अपने संन्यास का व्रत धारण कर पाएंगे कि नहीं, इतने युव अवस्था में और सुंदर रूप होने के कारण उन्होंने सोचा कि इनके संरक्षण के लिए उनको वेदांत का उपदेश देना अच्छा होगा, उचित होगा। और 7 दिन बीत गए और चैतन्य महाप्रभु ने एक शब्द नहीं कहा, केवल सुनते रहे सुनते रहे। और उसके बाद में सार्वभौम भट्टाचार्य ने उनको पूछा था कि क्या आपको कुछ मेरी बातें समझ में नहीं आई, क्या आप बोल क्यों नहीं रहे हैं। तो उन्होंने कहा चैतन्य महाप्रभु ने कि मैंने तो पूरी तरह से आपकी बातें समझ ली हैं, लेकिन किस तरह से आप प्रस्तुत कर रहे हैं वो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। आप जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल शास्त्र से कैसे बोल रहे हैं, तो आप सुनाओ। फिर चैतन्य महाप्रभु ने बड़े विस्तार में वेदांत के ऊपर टीका की, भाषण किया, प्रवचन दिया सार्वभौम भट्टाचार्य को। और सार्वभौम भट्टाचार्य प्रश्न करते गए और चैतन्य महाप्रभु उत्तर देते गए, और इस तरह से संवाद चला कि अंत में चैतन्य महाप्रभु की बातों को सुनकर सार्वभौम भट्टाचार्य वो पूरी तरह से चैतन्य महाप्रभु के शरण में आ गए, भगवान के भक्त बन गए। और इतने दृढ़ उनका विश्वास हो गया कि इसके बारे में एक छोटा सा प्रसंग आता है चैतन्य चरितामृत में, जिससे हम समझ सकते हैं कि मुक्ति तत्व क्या है ये किस तरह से सार्वभौम भट्टाचार्य ने समझ लिया था। एक बार चर्चा करते समय सार्वभौम भट्टाचार्य ने श्रीमद् भागवत का एक श्लोक कह दिया चैतन्य महाप्रभु के सामने। ये बहुत प्रसिद्ध श्लोक है जो कि ब्रह्मा जी ने उच्चारण किया था ब्रह्म विमोहन लीला के बाद में, जब ब्रह्मा जी क्षमा याचना करने आए थे श्री कृष्ण के पास, तो उन्होंने ये श्लोक कहा था। तत्तेनुकंपां सुसमीक्षमानो भुंजान एवात्मकृतं विपाकं हृद्वा वपुर्भिर्विदधं नमस्ते।
जीवे तयो मुक्ति पदे सदाय भाग।
ब्रह्मा जी बोलते हैं, तत्ते अनुकंपा सुसमीक्षमाणो भुंजान एवात्म कृतम विपाकम। जो भी दुख मेरे जीवन में अब आ रहा है हे कृष्ण, वो केवल इसलिए है कि कृतम विपाकम, जो पूर्व जन्मों में कोई कर्म किए होंगे, बुरे कर्म, पाप किए होंगे, उनकी वजह से ये पाप आता है। कोई व्यक्ति अगर इस तरह से सोच रहा होगा हे प्रभु कि मेरे जीवन में जो दुख है वो केवल मेरे पूर्व कर्मों का फल है और इनको सहन करते करते वो केवल आपकी कृपा की प्रतीक्षा करता है और इन दुखों को भी आपके अनुकंपा या कृपा का एक रूप समझता है, और ऐसे करते हृदवाग वपुह भी विदधन नमस्ते। हृद मतलब हृदय, वाक मतलब शब्द, वपुह मतलब शरीर। अपने हृदय से, अपने वचन से, अपने शरीर से अर्थात कार्यों से सतत आपकी सेवा में लगता है तो फिर वो आपके धाम में निश्चित जा सकता है। हृदवाग वपुह भी विदधन नमस्ते जीवे तो यो मुक्ति पदे सदाय भाग। मुक्ति पद के लिए या आपके धाम के लिए दाय भाग मतलब वो अधिकारी व्यक्ति बन जाता है, उसका हक होता है कि वो आपके धाम में वापस चले जाए। केवल उसकी भावना अगर ये रही तो हमारे लिए ये बहुत महत्वपूर्ण उपदेश है कि जीवन में कितने सारे कष्ट आएंगे और जाएंगे, सुख आएंगे जाएंगे, लेकिन विचलित न होते हुए हमें केवल दृढ़ता से भगवान की भक्ति करते रहना चाहिए और सोचना चाहिए कि हमारे दुखों के लिए दोष किसी और को नहीं देना चाहिए, समझना चाहिए कि दोष के लिए जिम्मेदार केवल हम हैं, क्योंकि ये जो दुख हैं केवल हमारे पूर्व पापों के फल हैं, इसके लिए हम किसी दूसरे को दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। और दूसरे अगर व्यक्तियों की वजह से हमें दुख हो रहा है तो हमें जानना चाहिए कि वो केवल निमित्त है, भगवान के कर कमलों में निमित्त है हमारे भाग्य को, हमारे कर्मों के फल को हम तक पहुंचाने के लिए। और ऐसी भावना रखते हुए हमें श्रद्धा से उनकी सेवा करते रहना चाहिए। और अगर ऐसे जीवे तयो, यह इस तरह से हमारा जीवन अगर बीत गया श्रद्धा से, तो फिर क्या होगा, मुक्ति पदे सदाय भाग, कि भगवान के धाम में हम निश्चित रूप से जा पाएंगे। केवल हमें भक्ति में टिकना है। दुख आ गया, कठिनाई आ गई, कुछ गड़बड़ हो गया, इसलिए हम निराश होकर या अश्रद्धालु होकर भक्ति को त्यागना नहीं चाहिए। भक्ति में टिक कर रहना चाहिए, जो भी परिस्थिति आए जीवन में, सुख आए, दुख आए, मान आए, अपमान आए, सम्मान आए, कुछ भी हो, हमें टिक कर रहना चाहिए। आचार्य इस श्लोक के ऊपर टीका करते हैं कि जैसे एक लड़के को अगर उसके पिता का जायदाद या उसकी संपत्ति को प्राप्त करना है तो ऑटोमेटिक खुद ब खुद वो लड़के के नाम पे जायदाद आ जाएगी। केवल अगर बच्चा, अगर लड़का पिता की सेवा करते रहे, पिता के साथ में रहे केवल, तो जब पिता गुजर जाएंगे तो जो भी संपत्ति है वो तो पुत्र के नाम में आएगा ही, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन अगर पुत्र जो है पिता के साथ झगड़ता है, झगड़ के घर से बाहर निकल जाता है, तो वे पिता जो भी संपत्ति है वो पुत्र को न देते हुए किसी मंदिर में देंगे, किधर कुछ देंगे, किधर और दान में दे देंगे या दूसरे बच्चों को दे देंगे, कुछ भी कर सकते हैं, बच्चे को नहीं मिलेगा। लेकिन बच्चा अगर केवल जीवित रहेगा, अगर लड़का जीवित है मतलब पिता की सेवा करता है ना, नहीं तो लड़का बनने का मतलब क्या है। अगर लड़का केवल जीवित रहेगा तो पिता का जो संपत्ति है उसको खुद ब खुद मिल जाएगा, बिना कुछ प्रयास किए हुए, बिना संघर्ष किए हुए। तो ठीक उसी तरह से आचार्य समझाते हैं कि ब्रह्मा जी जब बोलते हैं जीवे तो यो मुक्ति पदे सदाय भाग, इसका मतलब है कि अगर भक्त भक्ति में केवल जीवित रहेगा तो उसको भगवान के धाम की प्राप्ति निश्चित है, वो अधिकारी व्यक्ति है, हक से वो जा सकता है भगवान के धाम में।
भक्ति में जीवित रहना मतलब क्या? मतलब भक्ति को त्यागना नहीं कभी भी, हर आश्रय में रहना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक हम सबके लिए है। जब संवाद चल रहा था तो सर्वभौम भट्टाचार्य ने ये श्लोक कहा, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने नोट किया कि सर्वभौम भट्टाचार्य ने एक शब्द इस श्लोक में बदल दिया है। उन्होंने कहा आखिरी लाइन में, जीवेत यो भक्ति पदे सदाय भाग, मुक्ति पदे सदाय भाग नहीं कहा। तो चैतन्य महाप्रभु तुरंत नोट कर दिया और कहा कि अरे सर्वभौम, ये तो तुमने मुक्ति पदे को भक्ति पदे क्यों कह दिया? क्या तुम्हारा प्रयोजन है ये सब करने के लिए? तो सर्वभौम भट्टाचार्य ने कहा कि ये मुक्ति शब्द से मुझे घृणा है। अब सर्वभौम भट्टाचार्य को मुक्ति शब्द से क्यों घृणा है, मुक्ति शब्द में क्या बुराई है? तो इसके लिए हमें जानना चाहिए, याद रखना चाहिए कि सर्वभौम भट्टाचार्य भक्त होने के पहले कौन थे? मायावादी थे, निराकारवादी। और निराकारवादियों का उद्देश्य क्या होता है? निराकार, भगवान के निराकार स्वरूप में लीन हो जाना, अपने अस्तित्व को त्याग देना, आध्यात्मिक आत्महत्या करना। जैसे प्रभुपाद जी समझाया करते थे कि अगर कोई बच्चा मां के पेट के बाहर आकर आता है और फिर 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल का हो जाता है, शादी हो जाती है, उसके बच्चे हो जाते हैं और फिर जीवन का संघर्ष इतना कठिन हो जाता है, बहुत निराश हो जाता है, फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, जीवन से तंग आ जाता है बिल्कुल, और हैरान होकर मां के पास जाता है, मैं अभी जी नहीं सकता हूं, बहुत हैरान हूं जीवन से, मैं फिर से आपके पेट में जाना चाहता हूं। अब मां बोलेगी अरे कैसा बच्चा है, क्या है हा? ये कोई प्रस्ताव है कि बाहर जीवन में संघर्ष है इसलिए फिर से पेट में जाओगे? नहीं। तो उसी प्रकार से हम भगवान के अंश है, यहां आए हैं, भगवान ने हमें स्वतंत्रता दी है, हमें एक व्यक्तित्व दिया है, अस्तित्व दिया है, तो इसका उपयोग हमें उनकी सेवा के लिए करना चाहिए जैसे कि उनका उद्देश्य था। लेकिन भगवान के उद्देश्य को नकार कर अगर हम केवल भगवान में लीन होना चाहेंगे और खुद भगवान बनना चाहेंगे तो इस प्रकार का मोक्ष जिसमें आत्मा भगवान के निराकार ज्योति में लीन हो जाता है और अपने अस्तित्व खत्म करने का प्रयास करता है, खत्म कभी नहीं हो सकता आत्मा, क्योंकि आत्मा तो अमर है। न त्वेवाहम जातुनासम न त्वम नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्याम सर्वे वयम अतः परम। भगवान श्री कृष्ण गीता के दूसरे अध्याय में बताते हैं कि हे अर्जुन, ऐसा कोई समय नहीं था जब तुम नहीं थे, मैं नहीं था, न ये राजा नहीं थे, अब भी हम तीनों हैं, और न ही ऐसा कोई समय आएगा भविष्य में जब तुम नहीं रहोगे, मैं नहीं रहूंगा और ये राजा नहीं रहेंगे। तो श्री कृष्ण किसकी बात कर रहे हैं? शरीर की बात कर रहे हैं, जब तुम नहीं रहोगे, मैं नहीं रहूंगा और ये राजा नहीं रहेंगे। तो श्री कृष्ण किसकी बात कर रहे हैं? शरीर की बात कर रहे हैं, आत्मा की बात कर रहे हैं। शरीर की बात कैसे करेंगे? क्योंकि जब भगवान कह रहे हैं कि ऐसा कोई समय नहीं था कि हम सब नहीं थे, तो जन्म के पहले सब कहां थे? नहीं थे, वो शरीर नहीं था जन्म के पहले। और जब भगवान कहते हैं कि न ऐसा समय आएगा जब हम सब नहीं रहेंगे, तो मृत्यु के बाद राजा लोग कहां गए? खत्म हो गया उनका शरीर। लेकिन फिर भी भगवान बोल रहे हैं हम तीनों हमेशा हैं। जब भगवान अपने बारे में बोल रहे हैं ठीक है, समझ सकते हैं कि ये भगवान है, लेकिन अर्जुन और ये अन्य राजा, इसका मतलब है कि भगवान श्री कृष्ण आत्मा की बात कर रहे हैं। तो आत्मा का व्यक्तित्व, अस्तित्व, इंडिविजुअलिटी वो सनातन है। आत्मा का अस्तित्व कभी भी नष्ट नहीं हो सकता। गीता के 15वें अध्याय में भी भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि मैं, मेरे जो जीव हैं वो मेरे अंश हैं, प्राणी प्रकृति स्थानी कर्षति ममय वांश जीव लोके जीव भूत सनातन। ये जीव मेरे अंश हैं, कैसे? सनातन मतलब सनातन वो मेरे अंश हैं। ऐसा नहीं कि पहले मेरे अंश थे और बाद में पूर्ण हो जाएंगे, ऐसा नहीं कि पहले मेरे अंश थे और बाद में मैं ही वो भगवान बन जाएंगे, नहीं, पहले भी अंश थे, अब भी अंश हैं और भविष्य में भी अंश रहेंगे। अंश अंश ही रहता है, पूर्ण पूर्ण ही रहता है, और अंश और पूर्ण के बीच में एक प्रेम का संबंध रहता है जिसको भक्ति कहते हैं। अंश सनातन है, पूर्ण सनातन है, और अंश और पूर्ण का संबंध सनातन है, और तीनों का जो स्थान है, जो धाम है, वो भी सनातन है। तो जो निराकारवादी इस तरह से मोक्ष प्राप्त करके अपने अस्तित्व को ही नष्ट करना चाहते हैं, इसके बारे में सोचकर ही भक्तों को बहुत बुरा लगता है। कैवल्यम नरक आयते, ये कैवल्य मतलब लीन हो जाना, ये नरक के बराबर है। क्यों भक्त ऐसे अस्तित्व के नाश करने से घृणा क्यों करता है? क्योंकि भक्त जानता है कि जीवन का मतलब है भगवान की सेवा करना, उनको प्रसन्न करना। अगर भगवान की सेवा की संधि नहीं मिले तो जीवन का कोई मतलब ही नहीं, कोई इससे अच्छा कि हम पत्थर बने। जब प्राण है तो भगवान की सेवा करनी चाहिए, नहीं तो इसके अच्छा कि हम कोई जड़ वस्तु बने। क्योंकि जीवन का उद्देश्य है, भगवान ने हमें जो बनाया उसका उद्देश्य यह है कि प्रेम और सेवा का आदान प्रदान होते रहे। और जब कोई व्यक्ति निराकारवाद को स्वीकार करके इस अस्तित्व को ही तोड़ देना चाहता है, नकारना चाहता है, तो आत्मा जाकर प्रकाश में केवल स्थित हो जाता है, आत्मा आत्मा रह जाता है। जैसे एक तोता हरे रंग का होता है, हरे रंग का तोता एक हरे वृक्ष में जाता है, हमें लगता है कि वृक्ष लीन हो गया, वृक्ष में लीन हो गया, तोता खत्म हो गया। तोता है, वृक्ष भी है, उसके अंदर उसका अस्तित्व है। उसी तरह से जब आत्मा भगवान के निराकार प्रकाश में लीन हो जाती है, आत्मा का अस्तित्व नहीं, लेकिन क्योंकि आत्मा की भावना ऐसी है कि मैं भगवान में लीन होना चाहता हूं, तो भगवान प्रकाश में उन्हें स्वीकार कर देते हैं। तो क्योंकि सेवा का मौका नहीं मिलता है ब्रह्म ज्योति में लीन होने से, इसलिए भक्त उससे घृणा करते हैं, क्योंकि ये सेवा में अड़चन है। भक्त लोग ऐसे किसी भी चीज को स्वीकार नहीं करते हैं जो कि भगवान की सेवा में एक बंधन बन जाए। अगर धन आए और वो धन भगवान की सेवा में बंधन बन जाए, उसको त्यागेंगे। अगर धन भगवान की सेवा में लाभदायक हो तो ज्यादा से ज्यादा धन लेंगे। तो धन में कोई बुराई या अच्छाई नहीं है, भक्त के चित्त के ऊपर है। ये चीज का प्रयोग करके भक्त की भक्ति नष्ट होगी या उसके भक्ति का विकास होगा, उस आधार पर भक्त को निर्णय लेना चाहिए कि ये चीज को स्वीकार करना चाहिए या नहीं। इसलिए शरणागति के लक्षण में सनातन गोस्वामी बताते हैं पहले दो लक्षण, आनुकूल्यस्य संकल्पः प्रतिकूल्यस्य विवर्जनम्। जो चीजें भगवान की सेवा के लिए बिल्कुल अनुकूल हैं, लाभदायक हैं, उनको दृढ़ता से संकल्प से स्वीकार करना चाहिए, और जो चीजें भगवान की सेवा के लिए प्रतिकूल हैं, उतने ही संकल्प करके उनको त्यागना चाहिए। तो इसलिए भक्त लोग ये मायावाद दर्शन के बिल्कुल खिलाफ होते हैं। और हम देखते हैं कि जो भी चार वैष्णव संप्रदाय हैं, उन्होंने एक आवाज में ये निराकारवाद या मायावाद का सख्त खंडन किया है, चाहे वो मध्वाचार्य हो, रामानुजाचार्य हो, निम्बार्काचार्य हो, वल्लभाचार्य हो, चैतन्य महाप्रभु हो, कोई भी वैष्णव आचार्य हुए हो, इस दर्शन का उन्होंने सख्त खंडन किया है। तो सार्वभौम भट्टाचार्य ये पहले मायावाद के अनुयायी थे और सबसे बड़े नेता थे, इतने बड़े पंडित थे कि सारे देश में उनका वो प्रसिद्ध थे। वो राजा के तो मंत्री थे, एडवाइजर सहायक थे, वो सलाहकार थे, और वास्तव में बड़े पंडित थे, सारे शास्त्रों को जानते थे। केवल फर्क इतना था कि भगवान के अस्तित्व को नहीं जान पाए थे, भगवान के रूप को नहीं जान पाए थे, जो कि केवल चैतन्य महाप्रभु के कृपा से वो जान पाए। अब निराकारवाद के दर्शन के बाद भक्त बन गए, अब उनको पता चला कि मैं पहले कितने गलत काम कर रहा था। जैसे कि भक्ति में आने के पहले ऐसे होता है कि कई लोग, हो सकता है शराब पी रहा है पी रहे थे या कोई मांसाहार कर रहे थे, तो भक्ति में आने के बाद जब अटूट श्रद्धा हो जाती है तो उन्हीं कार्यों से बहुत घृणा होने लगती है, खास करके वो कार्य जो कि वो कर रहे थे पहले। सोचते थे कि मैं कितना पापी था, ये सब मैं कार्य करता था भक्ति में आने के पहले, छी 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 छी। उन्हीं चीजों से ज्यादा ये होता है। एक भक्त बता रहे थे कि मैं पहले प्याज के बिना जी नहीं सकता था, हर चीज में मुझे ताजा ताजा फ्रेश प्याज चाहिए था, उसको काट के फिर मैं लगाता था और वैसे बड़े बड़े प्याज में खा जाता था। लेकिन वो कहता भक्ति में आने के बाद जब एक बार मैं एक ऐसे रेलवे स्टेशन के बाहर, वो जो रास्ते में बेचते हैं खाना वगैरह, वो कुछ बना रहे थे खाना अपने हाथ गाड़ी में, और वहां पे वो तल रहा था, कुछ हो रहा था, वो प्याज का बास आया, मुझे इतना घृणा हुई उस समय, इतनी घृणा हुई कि मैं वहां से क्रोधित होकर निकल गया, वो पास में भी रुक नहीं पाया, हालांकि मैं काफी दूर था, लेकिन एक बार केवल गंध आया तो बहुत घृणा हो गई। तो ये स्वाभाविक है, लेकिन खतरा यह भी है कि अगर भक्ति में हम कोई लापरवाही करते हैं, गलती करते हैं, तो भगवान हमारे जो संरक्षण है उसको निकाल देते हैं, और जो काम हम भक्ति में आने के पहले करते थे वही काम करने में वापस हम चले जाएंगे। पहले जिन कार्यों में आसक्ति थी, जब भक्ति में सुदृढ़ हो जाते हैं तो उन कामों से नफरत हो जाती है, घृणा हो जाती है। लेकिन भक्ति में लापरवाही करेंगे, वैष्णव अपराध करेंगे, हम हरि नाम नहीं लेंगे, अभक्तों का ज्यादा संग करेंगे, हम थोड़े आलसी हो गए हमारे साधना में भक्ति में, तो धीरे धीरे से हम फिसलते जाएंगे भक्ति में, कमजोर हो जाएंगे। और अगर पूरी तरह से पतन हो गया तो पतन होने के बाद क्या करेंगे? वही कार्य जो पहले हम करते थे, जिनके प्रति हम पहले आसक्त थे, फिर जिनके प्रति घृणा करने लगे और फिर से आसक्त हो गए। इसलिए भक्त को चाहिए कि वो हमेशा सतर्क रहे, अपने नियमों के पालन में पक्का रहे, कभी लापरवाही नहीं करे अपनी सुरक्षा के लिए। तो इसलिए सार्वभौम भट्टाचार्य अभी भक्त बने थे, कट्टर भक्त बने थे, इसलिए उन्होंने कहा कि मुक्ति शब्द सुनकर ही मुझे वो सब याद आता है, अरे लीन हो जाना, अस्तित्व नष्ट करना, इसलिए मैंने मुक्ति शब्द को ही प्रयोग नहीं किया, तो मुक्ति को काट ही डाला मैंने, भक्ति डाल दिया उसमें। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि देखो तुम्हारी भावना ठीक है, बहुत अच्छी भावना है, लेकिन ये श्रीमद् भागवत है, ये शास्त्र का शब्द है, तुम उसको बदल नहीं सकते ऐसे, तुम्हारी भावना जो भी हो लेकिन शास्त्रों के वचन को बदला नहीं जा सकता है। और वैसे भी सच्ची मुक्ति का अर्थ क्या होता है? मुक्तिर हित्वान्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति, कि मुक्ति का सच्चा स्वरूप में स्थित होना। मुक्तिर अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति, स्वरूप में स्थित होकर अन्य चीजों को त्याग करना, इसको मुक्ति कहते हैं। अपना स्वरूप क्या है? जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास, तो हम कृष्ण दास हैं। अगर हम कृष्ण दास बन गए अर्थात कृष्ण के भक्त बन गए तो हम मुक्त हो गए। लेकिन ऐसा कृष्णदास नहीं बनना चाहिए कि मंदिर में भी आते हैं, जब भी करते हैं, सिनेमा भी देखते हैं, होटल भी जाते हैं, टीवी भी देखते हैं, बीच बीच में कुछ इधर उधर वो भी कर देते हैं, ऐसा कृष्ण भक्त नहीं। कृष्णदास मतलब जो सुदृढ़ है कृष्ण भक्ति में, मांचयो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीतेतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। गीता के 14वें अध्याय में भगवान बताते हैं कि जो व्यक्ति बिना पतन हुए, बिना पतित हुए, मांचयो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते, जो भक्ति योग में मेरी सेवा करता है, सगुणान सम तीतान ब्रह्म भूयाय कल्पते, गुणों को सत्वगुण रजोगुण तमोगुण के परे वो स्थित हो जाता है, ब्रह्म भूयाय कल्पते, ब्रह्मभूत अवस्था में आत्मा के स्तर में स्थित हो जाता है, क्योंकि वो कृष्णदास है। कृष्णदास मतलब कृष्ण की सेवा करता है। सेवक होने का मतलब है सेवा करना। अगर हम अपने आप को सेवक कहलाएं और सेवा नहीं करें तो कैसे सेवक हुए हम? तो कृष्णदास मतलब कृष्ण की सेवा करते रहना। और अगर इस तरह से बिना पतित हुए हम सेवा करते रहेंगे तो हम आध्यात्मिक स्तर में स्थित हो जाएंगे, और ऐसे स्तर में हम मुक्त कहलाते हैं। जीते हुए भी, इस शरीर में रहते हुए भी हम मुक्त पुरुष कहलाते हैं। इसलिए श्री रूप गोस्वामी ने जीवन मुक्त कौन होता है इसकी परिभाषा दी है। इह यस्य हरिर्दास्य कर्मणा मनसा गिरा निखिलाश्व अप्यवस्थासु जीवन मुक्त स उच्यते। वो कहते हैं इह यस्य हरिर्दास्य, जो हरि का दास है, कर्मणा अपने कर्मों से, मनसा अपने मन से, गिरा अपने शब्दों से, वो हमें भगवान की सेवा करते रहता है सतत। निखिलाश्व अप्य अवस्थासु, हमेशा ऐसे अवस्था में रहता है कि अपने शरीर से, अपने मन से, अपने वचनों से भगवान की सेवा करता हो तो क्या कहलाता है? जीवन मुक्त स उच्यते। ऐसे व्यक्ति को जीवन मुक्त पुरुष कहलाता है। तो चैतन्य महाप्रभु समझाना चाहते थे सर्वम भट्टाचार्य को कि सही मुक्ति का मतलब तो ये है कि कृष्ण भक्ति में स्थित हो जाना, अपना स्वरूप में स्थित हो जाना। जो निराकारवादी है वो लोग सोचते हैं कि मुक्ति का मतलब है लीन हो जाना, लेकिन मुक्ति का अर्थ एक नहीं है, कई अर्थ हो सकते हैं। जैसे कि नरक से मुक्त होना, पुन्नामत्रायते इति पुत्रः, पुत्र वो है जो पिंडदान इत्यादि श्राद्ध करके अपको पू नाम के नरक से मुक्त करा दे, वो भी एक प्रकार की मुक्ति है। डॉक्टर है जो हमें दवाई देकर हमें रोग से मुक्त करा देता है, कोई कष्ट से मुक्त करा देता है, तो कई तरह की मुक्ति हो सकती है। तो मायावादियों की मुक्ति यह है कि निराकार में लीन हो जाना, लेकिन सही मुक्ति यह नहीं है। सही मुक्ति क्या है? स्वरूप एण व्यवस्थिति ही। तो चैतन्य महाप्रभु समझाने लगे, ठीक है तुम्हारी भावना बहुत अच्छी है, लेकिन शास्त्रों का शब्द नहीं बदल सकते। फिर भी सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा, नहीं नहीं नहीं, मुक्ति वो शब्द नहीं, हमको भक्ति पद, भक्ति पद बहुत अच्छा है कि हमको भक्ति पद में स्थित होना चाहिए। तो इससे हम समझ सकते हैं कि सार्वभौम भट्टाचार्य को मुक्ति का तत्व कितना अच्छी तरह से मालूम था, और मुक्ति के तत्व को ज्यादा प्रदर्शित करने के लिए, इसका प्रचार करने के लिए उन्होंने सार्वभौम भट्टाचार्य को वाहन बनाया। ठीक उसी तरह से चैतन्य महाप्रभु ने श्रील रूप गोस्वामी को भी एक निमित्त बनाया। किस चीज के लिए? किस ज्ञान को देने के लिए? रूप तरह से विश्लेषण किया, अलग अलग तरह से, तरह के रसों के, कि भगवान की सेवा करने के कौन सी अलग अलग रस होते हैं। दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य रस, माधुरी रस, अलग अलग भाव, इनमें बड़े निपुण थे रूप गोस्वामी। इसलिए उनके माध्यम से ये तत्व का प्रचार, और रूप गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु से शिक्षा प्राप्त की दशाश्वमेध घाट में, प्रयागराज में, और उसके बाद लगातार 10 दिन शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने कई ग्रंथ लिखे। जैसे कि सबसे प्रमुख कौन सा उनका ग्रंथ है? भक्ति रसामृत सिंधु, भक्ति के रस के अमृत का सिंधु, उज्ज्वल नीलमणि, लघु भागवतामृत, उपदेशामृत इत्यादि, ऐसे कई ग्रंथ उन्होंने लिखे। तो इस तरह से हम जान सकते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने अलग अलग भक्तों के मुंह से, मुखारविंद से, उन्हीं की शिक्षा सारे दुनिया के हित के लिए प्रचार करवाया। श्रेय उन भक्तों को गया। तो इसी तरह से हरिदास ठाकुर के माध्यम से उन्होंने हरि नाम का गुणगान कराया। चैतन्य चरितामृत में, चैतन्य भागवत में, ऐसे कई ग्रंथों में हरिदास ठाकुर की महिमा का वर्णन आता है, और कई घटनाएं आती हैं, लीलाएं आती हैं जहां हरिदास ठाकुर ने व्याख्या की हरि नाम के ऊपर। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने एक किताब से जानकारी लेकर ये हरिनाम चिंतामणि किताब लिखी। ये और एक किताब कौन सी थी? उनको एक किताब मिला जिसमें एक शुद्ध वैष्णव ने हरिदास ठाकुर से बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त किया था हरिनाम के ऊपर, मतलब हरिदास ठाकुर ने उनको उपदेश दिया होगा प्रत्यक्ष रूप से, तो उस भक्त ने उस उपदेश को ग्रहण किया और फिर उसको किताब रूप में लिखा और इसका समर्पण हरि को किया था और यह किताब भक्ति विनोद ठाकुर के हाथ में आ गई। तो इन सब किताबों के आधार पर उन्होंने यह हरिनाम चिंतामणि का ग्रंथ लिखा है। और भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि यह ग्रंथ किसके लिए है, यह ग्रंथ केवल उन श्रद्धालु भक्तों के लिए है जो पूरी तरह से भगवान के शरण में आए हैं, जिन्होंने पूरी तरह से हरिनाम का आश्रय लिया है, जिनको चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों में पूर्ण अटूट विश्वास है, श्रद्धा है। ये अश्रद्धालु भौतिकवादी लोगों के लिए यह किताब नहीं है, क्योंकि वो समझ नहीं पाएंगे। हरिनाम के प्रति 10 अपराध है ना, नौवां अपराध कौन सा है? अश्रद्धालु को कृष्ण नाम की महिमा का उपदेश करना, क्योंकि अश्रद्धालु लोग हरिनाम को समझ नहीं पाएंगे। अरे अरे क्या बोलते हो, हरिनाम लेने से मुक्ति मिल जाएगी, वो ऐसा बोलेंगे जैसे हरिदास ठाकुर के साथ हुआ था। इन लीलाओं का वर्णन अगले एकादशियों में करेंगे। तो ऐसे अश्रद्धालु लोगों को उनके स्तर पे हमें बताना चाहिए आत्मा शरीर इत्यादि। तो ये श्रद्धालु भक्तों के लिए है, इसलिए अगली बार से पहले अध्याय से ये हरिनाम चिंतामणि शुरू करेंगे। तो कृपया अगले एकादशी को 5 बजे ठीक ये हरिनाम चिंतामणि में अलग अलग प्रश्न जो चैतन्य महाप्रभु पूछते हैं हरिदास ठाकुर को, वो हम सुनेंगे और हरिदास ठाकुर क्या जवाब देते हैं हम वो भी सुनेंगे हरिनाम के ऊपर। श्री हरिनाम चिंतामणि की जय। श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय। श्री श्री गौरनिताय की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा। पिछले एकादशी को इसी समय हरिनाम चिंतामणि इस ग्रंथ के ऊपर चर्चा आरंभ हुई थी। पिछली बार हम चर्चा कर रहे थे कि ये ग्रंथ श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने लिखा है और ये हरिनाम के महिमा का वर्णन है और इसमें चैतन्य महाप्रभु और नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर का संवाद है। पिछली बार हम ये भी सुन रहे थे कि भगवान की लीलाओं में कई विशेषताएं होती हैं। चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में तो विशेष विशेषताएं होती हैं और उनमें से एक ये है कि उन्होंने अपने भक्तों के मुखारविंद के माध्यम से बहुत सारे महत्वपूर्ण बातें सारे जगत को प्रचार कराई। जिस क्षेत्र में कोई भक्त विशेष रुचि रखते थे तो उस क्षेत्र में उस भक्त के माध्यम से उन्होंने कई ऐसे महत्वपूर्ण तत्वों को प्रदर्शित किया, जैसे कि रामानंद राय के माध्यम से उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के माधुर्य रस का प्रदर्शन किया। सार्वभौम भट्टाचार्य इनके माध्यम से इन्होंने मुक्ति के बारे में ज्यादा जानकारी हम सबको दी। श्रील रूप गोस्वामी के माध्यम से उन्होंने यह सिखलाया कि भगवान के साथ जो अनेक संबंध होते हैं जीवों के, जिनको रस कहते हैं, वो कितने विविध प्रकार के होते हैं और कितने अलग अलग स्तर के होते हैं, ये विश्लेषण करके उन्होंने रूप गोस्वामी के माध्यम से प्रदर्शित किया सारे जगत के लिए। और हरिदास ठाकुर के माध्यम से उन्होंने ये सिद्ध कर दिखाया कि हरिनाम की महिमा कितनी अपार है। हरिनाम ही सब कुछ है, जीवों के उद्धार के लिए एकमात्र मार्ग हरिनाम है। और चैतन्य महाप्रभु ने स्वतः
हरिदास ठाकुर को नामाचार्य की पदवी दी। नाम का आचरण करने में जो सर्वश्रेष्ठ है वो है नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर। और चैतन्य महाप्रभु की इन संवादों में ये विशेष बात भी थी कि वो अपने आप को एक शिष्य या जिज्ञासु के रूप में पेश करते थे। तो रूप जैसे हरिदास ठाकुर के सामने उन्होंने प्रश्न किए और हरिदास ठाकुर ने उत्तर दिए, और हर बार हरिदास ठाकुर या रामानंद राय वो कहते थे वैसे हम तो आपके हाथ में कठपुतली हैं, जैसे आप हमारे मुख से बुलवाएंगे वैसे हम बोलेंगे। हम ये नहीं सोचेंगे कि हम जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, ये क्या है, सही तत्व है कि नहीं है, क्योंकि हम जो भी बोल रहे हैं आप ही बोल रहे हैं। हमारी जिह्वा जो है ये एक वाद्य है, तार वाला वाद्य, और ये तार आप बजा रहे हैं। जैसे आप तार बजा रहे हैं वैसे हमारी जिह्वा हिल रही है और नाना प्रकार के ध्वनि शब्द हमारे मुंह से आ रहे हैं। ये कैसे शब्द निकल रहे हैं, इनका मतलब क्या है, हमें नहीं पता नहीं है, लेकिन आप हिला रहे हैं हमारी जिह्वा, हम बोल रहे हैं। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु एक बार जब जगन्नाथपुरी के मंदिर से लौटकर आ रहे थे और उनकी दिनचर्या यही थी कि जब भी दोपहर के समय मंदिर में दर्शन संकीर्तन इत्यादि करके लौटते थे अपने निवास स्थान में जिसको गंभीरा कहते हैं, तो वो सिद्ध बकुल नाम के स्थान में अवश्य आया करते थे जहां की हरिदास ठाकुर रहते थे। अभी दो दिन में ही कई भक्त यहां से जगन्नाथपुरी की यात्रा में निकलेंगे, तो इन सारे स्थानों के ऊपर के पास हम जाएंगे। जगन्नाथ मंदिर में तो जाएंगे ही, साथ साथ में चैतन्य महाप्रभु का निवास स्थान जिसको गंभीरा कहते हैं, काशी मिश्र नाम के भक्त का निवास स्थान था, और साथ साथ सिद्ध बकुल जहां पर हरिदास ठाकुर निवास करते थे और जहां पर वो 196 माला हरे कृष्ण महामंत्र का रोज जाप किया करते थे, उस स्थान में भी हम जाएंगे। और वह वृक्ष आज भी वहां है, बकुल वृक्ष, इसलिए उसको सिद्ध बकुल कहते हैं। तो हरिदास ठाकुर के पास रोज चैतन्य महाप्रभु आया करते थे, और एक दिन वो वहां पर आए और उन्होंने हरिदास ठाकुर से प्रश्न किया कि हरिदास ये बताओ कि ये जो ब्रह्मांड के अंदर जितने भी बद्ध जीव हैं उनके उद्धार का मार्ग क्या है, मुझे कोई मार्ग दिखाई नहीं पड़ता है। तो हरिदास ठाकुर ने तुरंत चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों को पकड़ लिया और उनके आंखों से आंसू आने लगे, शरीर कांपने लगा, और बहुत दीन भावना से वो चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना करने लगे। कहने लगे कि मैं तो एक दुर्भाग्यशाली और पतित जीव हूं और आप तो स्वयं भगवान हैं, आपकी लीला ये अनंत है और हमारे लिए हमारे समझ के बाहर है। आप वही श्री कृष्ण हैं जो इस बार नवद्वीप में अवतीर्ण हुए हैं सारे प्राणियों का उद्धार करने के लिए। आपकी कृपा बड़ी असीम है, आप यहां आकर अलग अलग तरह से लोगों का उद्धार करने के लिए आपके नाम, आपकी लीला, आपका रूप इत्यादि प्रदर्शित कर रहे हैं ताकि मुझ जैसा पतित जीव भी इसमें रस प्राप्त कर सके, और आप मेरे से ऐसे प्रश्न कर रहे हैं, मुझे तो क्या मालूम है लेकिन फिर भी आप मुझे प्रश्न कर रहे हैं, आपका आदेश है तो हम दो शब्द कहने का प्रयास करेंगे, लेकिन ये दो शब्द भी आपके ही दो शब्द हैं, तो जो भी आप हमारे शब्द मुंह में डालेंगे शब्द हम उस प्रकार से बोलने का प्रयास करेंगे। फिर हरिदास ठाकुर ने एक प्रवचन ही आरंभ किया और उस प्रवचन में उन्होंने सारा कृष्ण तत्व बताया कि भगवान कौन है, उनके ऐश्वर्य क्या हैं, उनकी शक्तियां क्या हैं, किस प्रकार की शक्तियां उनके पास होती हैं और किस तरह से ये शक्ति यहां पर काम करती हैं, और कोई जीव क्या है, जीव का बंधन कैसा है, और जीव को इस बंधन से मुक्त होने के लिए कौन से तरीके हैं, तो थोड़ा संक्षेप में हम बताएंगे। हरिदास ठाकुर कहने लगे कि श्री कृष्ण तो परम सत्य हैं, परम स्वतंत्र हैं, परम नियंत्रण करता है, वो जो भी कुछ चाहे वो कर सकते हैं, ये है भगवान। कई बार लोग ऐसा पूछते हैं कि भगवान ने ऐसा क्यों किया, अगर वो ऐसा करते हैं तो ये ठीक नहीं उनके लिए। इसका मतलब है कि ये लोग भगवान कौन है ये नहीं समझते। भगवान वो है जो मन में आए वो कर नहीं, ये होता है भगवान। हम अगर कोई कार्य करते हैं तो 100 लोग पूछने वाले होते हैं, लेकिन भगवान को कोई पूछ नहीं सकता। हाँ, पूछने वाले हैं लेकिन पूछकर कुछ कर नहीं सकते भगवान को, पूछते रह जाते हैं। ऐसे अनादि काल से कितने लोग आए हैं जो कहते हैं भगवान है ही नहीं। जैसे एक चुटकुला है छोटा सा कि आप जानते हैं कि जहां भी पब्लिक शौचालय रहते हैं वहां लोग नाना प्रकार की चीजें अंदर लिखते हैं दीवार के ऊपर, या बाहर भी दीवारों पर लोगों की आदत है कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं। तो एक व्यक्ति ने लिखा था दीवार पे, भगवान नहीं है, और नीचे अपना नाम लिखा था जॉन। इसका मतलब यह नहीं कि भगवान नहीं हुए, जॉन ने कहा इसलिए भगवान नहीं है, ऐसा नहीं है। ऐसे बहुत सारे जॉन, जैक, जिल आके चले भी गए, लेकिन भगवान है वैसे ही। भगवान के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा कितने जॉन, जैक, जिल आए गए। फिर उसके नीचे और किसी बुद्धिमान व्यक्ति ने उसका उत्तर लिखा, जॉन नहीं है भगवान। तो पहले जॉन ने अपना नाम नीचे लिखा है, पीछे भगवान ने अपना नाम लिखा कि जॉन ही नहीं है। हाँ, कितने दिन जॉन रहने वाला है, 50 साल, 100 साल बाद में जॉन खत्म। जॉन के जन्म के पहले जॉन कहाँ था, जॉन की जान नहीं थी, और थोड़े दिन बाद भी जॉन की जान चली जाएगी। तो थोड़े दिन के लिए जॉन आया, कहता है भगवान कहाँ है, कौन है, क्या है, कह के चला जाता है, फू 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 करके थोड़ा आवाज करके चला जाता है, लेकिन भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान का अस्तित्व जैसे है वैसे ही रहता है। भगवान ने ऐसे क्यों किया, वैसे क्यों किया, ये ठीक नहीं भगवान के लिए, वैसा नहीं करना चाहिए था, श्री कृष्ण ने रासलीला करना ठीक नहीं, द्वारका में इतने सारे रानियों से विवाह किया वो ठीक नहीं, उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में ऐसे किया वो क्यों किया। तो बहुत सारे लोग पूछने वाले हैं, उनके अस्तित्व को नकारने वाले भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता, न ही भगवान को कोई आवश्यकता है उनकी बातें सुनने के लिए। लेकिन हमारे लिए ऐसा नहीं है, हमें बहुत कुछ सोचना पड़ता है। दूसरे लोग जो कहते हैं, चाहे भक्त हो, बाहर के हो, और सरकार का कानून है, कायदा है, उसका पालन नहीं करेंगे तो फिर हमें बहुत कष्ट होगा। तो भगवान जो चाहें वो कर सकते हैं, ये है भगवान। और भगवान अनंत कोटि शक्तियों के उद्गम है, उनके पास शक्तियां हैं, और सारे शक्तियां उनके वश में रहती हैं हमेशा। ये महत्व की बात है। अगर किसी व्यक्ति के पास कोई शक्ति है, कोई पैसा है, कोई नौकर है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये सारे नौकर और ये सारे पैसे हमेशा उसकी सेवा में उपलब्ध रहेंगे। एक छोटा सा उदाहरण, जैसे कितने सारे लोगों ने बैंक में, सोसाइटी में पैसे रखे हैं, और कितनी बार ऐसे देखा जाता है कि वो सोसाइटी, बैंक डूब जाता है, गया उसका पैसा। उसने सोचा मेरे पास इतनी शक्ति है, मेरे पास 2 लाख रुपए बैंक में रखे, बैंक ही डूब गया तो पैसे गए ना, कहां आया बैंक, पैसा भी, शक्ति चली गई। दूसरी बार कभी ऐसा होता है कि किसी का नौकर होता है, कर्मचारी होता है कारखाने में, लेकिन वो कोई संगठना बनाते हैं, हड़ताल करते हैं, सारा लॉकआउट कर देते हैं, सब बंद कर देते हैं। तो हमारी जो शक्तियां हैं ये हमारे वश में हमेशा नहीं रह सकती, लेकिन भगवान की शक्तियां हमेशा भगवान के वश में रहती हैं। ऐसे हरिदास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु से कहने लगे कि भगवान श्री कृष्ण जो शक्तियां हैं भगवान से अभिन्न है, भगवान और उनकी शक्तियों में बिल्कुल अंतर नहीं है। और भगवान के 3 तरह के प्रमुख शक्तियां होती हैं, और ये जो भी शक्तियां हैं केवल उनके ऐश्वर्यों का प्रदर्शन है। भगवान की शक्ति क्या है, उनका ऐश्वर्य है, वैभव, उनके वैभवों का प्रदर्शन उनकी शक्ति कहलाती है। एक है चित्त शक्ति, मतलब भगवान की आध्यात्मिक शक्ति, जिससे कि उनका रूप, उनका धाम, उनका नाम, उनकी लीला, उनके गुण, ये सारे चीजें प्रकट होते हैं। ये पूरी तरह से शुद्ध आध्यात्मिक है, इसमें कोई भौतिक मिलावट नहीं है। और ये आध्यात्मिक शक्तियां भी तीन प्रकार की होती हैं। चित्त शक्ति, हम पहले भी कई बार चर्चा कर चुके हैं, संधिनी, संवित और लादिनी। संधिनी मतलब जिस शक्ति से भगवान अपने अस्तित्व का पालन करते हैं, संवित यानी जिस शक्ति से जीव अपने आप को और भगवान को और सब कुछ को जान सकता है, और लादिनी मतलब वो शक्ति जिससे कि जीव और भगवान को आनंद मिलता है। भक्ति में एक आनंद आदान प्रदान जब प्रेम का होता है जीव और भगवान के बीच में, तो ये आनंद भगवान की लादिनी शक्ति से आता है। तो ये तीनों प्रकार की शक्ति चित्त शक्ति में आती है, चित्त वैभव में, मतलब भगवान की आध्यात्मिक वैभव शक्ति। दूसरा वैभव या दूसरा शक्ति है अचित शक्ति, अचित वैभव, माया वैभव, जिससे कि ये जड़ जगत बना है, ये प्रपंच बना है, जिसमें कि आठ तत्व हैं, जिनसे ये सारे ब्रह्मांड बने हैं, 14 भुवन इत्यादि। ये जो अचित शक्ति या माया शक्ति है, ये चित शक्ति की छाया है। सत्य तो चित शक्ति है और ये केवल छाया मात्र है। और इस छाया रूपी शक्ति से ये भौतिक जगत बनता है, जिसको देवी धाम कहते हैं। छाये यस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा, दुर्गा देवी ये भौतिक शक्ति छाया के समान है और इसमें सारे जीव बद्ध अवस्था में है। और तीसरी शक्ति है जिसको जीव वैभव कहते हैं, जीव शक्ति। ये जीव शक्ति वास्तव में चित शक्ति है, लेकिन अचित शक्ति के वश में आ गए हैं। जीव अनंत है, इनकी कोई गणना नहीं कर सकता, कोई गणना मतलब हमारे गणित के बाहर है। जितना भी नंबर आप सोचिए, करोड़, 10 करोड़, लाखों लाख करोड़, 10 लाख करोड़, जितने भी बड़ा अंक आप सोचिए, जीवों की संख्या उससे ज्यादा है। केवल इस एक कमरे में, इस एक मंदिर में कितने सारे प्राणी होंगे, कितने सारे जीव। इतने से हवा में हम एक भी जंतु को देख नहीं सकते, लेकिन करोड़ों जंतु हैं, हम उनको देख भी नहीं सकते इतने छोटे से हवा में। तो सोच लीजिए कि सारे मंदिर में कितने जीव जंतु होंगे, हमारे शरीर के अंदर कितने जंतु हैं, करोड़ों करोड़ों जंतु। और ये सब थोड़े बुरे काम करते हैं, थोड़े अच्छे काम भी करते हैं। हमारे पचन के कार्य में भी कई ऐसे जंतु हैं जो मदद करते हैं। तो कितने सारे जीव, और यहां पर सारे जीव बद्ध अवस्था में हैं, लेकिन भगवान के धाम में जो जीव हैं वो मुक्त हैं, सदैव भगवान के साथ रहते हैं, उनकी लीला में भाग लेते हैं। और फिर हरिदास ठाकुर कहने लगे कि यहां का जो सत्वगुण है, ये सत्वगुण मिश्र सत्व कहलाता है, ये शुद्ध सत्वगुण नहीं है। हमने सुना है ना, रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण, यहां का जो सत्व है ये मिश्रित है, हमेशा तमोगुण और रजोगुण रहता ही है। क्यों? क्योंकि यहां जन्म और मृत्यु है। जन्म कौन से गुण से आता है? रजोगुण से। मृत्यु कौन से गुण से आता है? तमोगुण से। क्योंकि मृत्यु मतलब नाश, नाश तमोगुण से आता है। जन्म मतलब उत्पत्ति, उत्पत्ति रजोगुण से आता है। तो यहां पर जो कि जन्म मृत्यु का संसार है, यहां रजगुण और तमोगुण तो होता ही है, और यहां सत्वगुण में भी रजगुण और तमोगुण का मिश्रण हमेशा रहता है। लेकिन भगवान के धाम को शुद्ध सत्व कहते हैं, वहां कोई तमोगुण और रजगुण नहीं है। तो शुद्ध सत्व और मिश्र सत्व, शुद्ध सत्व में भी दो प्रकार हैं, जैसे कि भगवान के अलग अलग विष्णु रूप, भगवान के अलग अलग अवतार, मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, नरसिंह अवतार, श्याम सुंदर, गोविंद, कृष्ण, ये सब शुद्ध सत्व अवस्था, भौतिक गुणों की मिलावट नहीं है, का स्पर्श नहीं है। लेकिन जो जीव तत्व हैं, वो मिश्र तत्व में कहलाते हैं। शिव जी, ब्रह्मा जी भी इस तत्व में आते हैं, क्योंकि उन्होंने स्पर्श किया हुआ है भौतिक गुणों का, इसलिए वो शुद्ध सत्व अवस्था में नहीं है, जैसे कि विष्णु है। और विष्णु तत्वों का, जो भगवान के अलग अलग अवतार हैं, उनकी विशेषता यह है कि वो जहां भी रहें, चाहे गोलोक वृंदावन में हो, चाहे वैकुंठ लोकों में हो, चाहे कारण सागर में हो जहां के महाविष्णु रहते हो, चाहे भौतिक ब्रह्मांड के भीतर हो, चाहे किसी अणु के अंदर या हृदय के अंदर हो, वो हमेशा ये शुद्ध सत्व अवस्था में रहते हैं। ये भौतिक गुण कभी भी उनको प्रभावित नहीं कर सकते, जैसे कि हमको करते हैं। हम तो तीन गुणों के वशीभूत हैं, हम तीन गुणों के हाथों में हम कठपुतली हैं, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण। लेकिन भगवान कभी ऐसे नहीं होते। और जो लोग ऐसा सोचते हैं कि भगवान जब अवतार लेते हैं तो तीन गुणों के अधीन होते हैं, उनका शरीर इन तीन गुणों के तत्वों से बना होता है, उनको क्या कहते हैं? मायावादी, जो कहते हैं कि भगवान का शरीर माया से बना हुआ है, माया के तत्वों से बना हुआ है। और शिवजी ब्रह्मा जी भी इस तरह से मिश्र तत्व में कहलाते हैं, मिश्र सत्व में। इस प्रकार से हरिदास ठाकुर ने कहा कि भगवान की अनंत शक्तियां जो हैं ऐसे चलती रहती हैं। और उन्होंने कहा कि भगवान कितने कृपालु हैं, अनादि काल से वो जीवों की इच्छा पूरी करते आए हैं। कितनी कृपा है भगवान की, हमेशा कृष्ण जीव के साथ में रहता है, कभी जीव को छोड़ता नहीं है। अभी देखिए कितने सारे नास्तिक लोग हैं यहां, है ना, कितनी संख्या बढ़ रही है। लेकिन तिक्ता की बुद्धि भी कहां से आती है, वो भी भगवान देते हैं, उनको भी भोजन देते हैं, उनका भी अंग शरीर चलाते हैं भगवान ही चलाते हैं, उनको भी कर्मों का फल भगवान ही देते हैं, उनका पालन पोषण भरण पोषण भी भगवान ही करते हैं। तो भगवान ये नहीं सोचते हैं कि अरे ये तो नास्तिक बन गया, ये मेरे पास नहीं आता है, सब जगह जाके घोषणा कर रहा है कि भगवान ही नहीं है, तो मैं इसको खाना नहीं दूंगा, मैं इसका हार्ट फेल करा दूंगा, मैं उसको आज ही मार दूंगा। नहीं, भगवान नहीं कहते। भगवान कहते ठीक है, इसकी इच्छा है ना कि ये सिद्ध करने के लिए कि मैं नहीं हूं, तो मैं उसको ऐसे बढ़िया बुद्धि दूंगा जिससे कि वो जगह जगह जाकर लोगों को मोहित कर सके और लोगों को बता सके कि भगवान ही नहीं है, उसकी भी इच्छा पूरी करते हैं। और दूसरी जगह कोई व्यक्ति है जो चाहता है कि मैं भगवान की सेवा करना चाहता हूं, तो भगवान कहे ठीक है, इसकी इच्छा है ना मेरी सेवा करने के लिए, इसको भी मैं ऐसी बुद्धि दे देता हूं कि अच्छी तरह से मेरी भक्ति कर सकेगा। और कोई लोग हैं जो चाहते हैं कि हम भोग करें, तो भोग करने की इच्छा दे देते हैं। हर एक प्राणी को भोग करने की इच्छा भगवान अंदर से देते हैं। और थोड़े लोग हैं जो ज्ञान मार्ग में चलना चाहते हैं, उनको भी वो ज्ञान कांड दे देते हैं ताकि वो नेति नेति करके निराकार ब्रह्म की उपासना करें, निराकार में लीन होने का प्रयास करें। इस तरह से अगर इच्छाओं का विभाजन किया जाए तो तीन तरह की इच्छा हो सकती है। इच्छा तो अनंत कोटि हो सकती है, लेकिन अगर केवल विभाजन किया जाए, एक है इंद्रिय तृप्ति करना या संसार का भोग करना। संसार के भोग करने के कितने तरीके हैं, कितने हैं? अनंत तरीके। और इसलिए भगवान ने इतने सारे योनियां बनाई हैं। कई बार प्रश्न होता है कि इतने सारे योनियां क्यों बनाई भगवान ने, केवल मनुष्य योनि बनाई होती अच्छा हो जाता, सब मनुष्य में जन्म लेते, अभी शेर आके हमको खा जाता है, कितना तकलीफ है, कुत्ते रात रात भौंकते रहते हैं, मच्छर काटते हैं, इसे अलग अलग योनि से कितनी तकलीफ होती है, एक ही योनि हो जाता अच्छा होता। लेकिन ये अलग अलग योनियां भगवान ने बनाई हैं जीव के अलग अलग विभिन्न इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए। जो भोग सुअर के शरीर में, एक कबूतर के शरीर में, बंदर के शरीर में आसानी से उपलब्ध होता है, वो मनुष्य शरीर में इतनी आसानी से उपलब्ध नहीं होता। और जो चीजें मनुष्य देहती हैं, जैसे कि भगवान का साक्षात्कार, वो दूसरे योनियों में नहीं हो सकता है। इसका मतलब है 84 लाख योनियां हैं, ये क्या हैं? ये केवल अलग अलग तरह के विभिन्न इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए साधन है। किसी जीव को चाहिए बहुत गंदे गंदे चीजें मैं खाऊं 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 खाते रहूं, दिन भर खाते रहूं बिना कोई विवेक बुद्धि के, ये खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, इसका कोई विवेक नहीं करता है। तो कहते हैं ठीक है, सुअर का शरीर बढ़िया है इसके लिए, क्योंकि सुअर विवेक नहीं करता क्या अच्छा है क्या नहीं है, गंदा है अच्छा है, नहीं, जहां भी कुछ भी मिले वहां मुंह डाल के खाने लगता है। उसी तरह से शेर होता है, तो शेर उसको लपक के किसी पशु के ऊपर उसको फाड़ के खाने की, मांस खाने की इच्छा होती है, तो उसके लिए वो शेर का शरीर दिया जाता है। तो ऐसे अलग अलग जो भी शरीर हैं, वो अलग अलग तरह की इच्छाओं की पूर्ति के लिए भगवान ने दिए हुए हैं, इसलिए ये विभिन्न शरीर हैं। तो भोग करने के लिए ये 84 लाख अलग अलग तरीके हैं, लेकिन फिर भी इन 84 लाख तरीकों में से भी और कितने तरीके हैं। जैसे हम देखते हैं कि मनुष्य योनि में भी कितने अलग अलग भोग करने के तरीके हैं। कोई सोचता है मैं सिनेमा में जाके भोग करूंगा, कोई सोचता है मैं शराब के दुकान में जाके भोग करूंगा, कोई सोचता है कि मैं संगीत में भोग करूंगा। तो अलग अलग तरह के भोग इस एक योनि में भी हो सकते हैं। तो इस तरह से भगवान ही हैं जो कि इस भोग करने की इच्छा को भी पूर्ण कर रहे हैं। कई बार लोग कहते हैं कि अगर भोग ठीक नहीं है, अगर पाप है, तो भगवान भोग का साधन क्यों देते हैं, हमें भोग में भोग करने के लिए सहायता क्यों करते हैं, वो बुद्धि क्यों देते हैं, वो संधि क्यों देते हैं? क्योंकि आप चाहते हैं इसीलिए, क्योंकि आपकी इच्छा है। और भगवान बड़े कृपालु हैं हर एक जीव के ऊपर, अनादिकाल से भगवान जीव की इच्छा पूर्ण करते आए हैं। तो आपकी इच्छा है भोग करने के लिए, चलो किस तरह से भोग करना है, ऐसे भोग करना है, चलो ले लो शेर का शरीर, खाओ जितना मांस खाना है खाओ। और क्या करना है, सोना है, बहुत ज्यादा सोना पसंद है, भालू का शरीर ले लो, सो जितना चाहिए उतना सो जाओ। मनुष्य शरीर मिला, मनुष्य शरीर मिलने के बाद भी इस तरह का भोग करना है, ठीक है ये शरीर ले लो। तो भगवान प्रेम करते हैं सारे जीवों के ऊपर, उन्होंने जीव को स्वतंत्रता दी है, और ये स्वतंत्रता का दुरुपयोग या सदुपयोग जीव कर सकता है। अगर सदुपयोग किया तो भगवान की सेवा में लगेंगे, अगर दुरुपयोग किया तो भोग करता है। तो भगवान कभी भी जीव की स्वतंत्रता में वो गड़बड़ नहीं करते, जैसे जीव की इच्छा पूर्ण करते हैं। हां जीव को मार्गदर्शन देते हैं, लेकिन जीव के साथ कभी भगवान जबरदस्ती नहीं करते। तो इस तरह से ये एक तरह की इच्छा है भोग। दूसरी तरह की इच्छा है भगवान के निराकार में जाना, ज्ञान की प्राप्ति करना। ऐसा व्यक्ति जो है वो समझता है कि यह संसार दुखालयम है, भोग में कोई आनंद नहीं, जितना भोग करेंगे उतना दुखी मिलेगा, इस बात को समझ जाता है। लेकिन श्री कृष्ण को नहीं जानता, भगवान के व्यक्तित्व को नहीं जानता, वो केवल निराकार में रुचि लेता है। तो उसकी इच्छा भी भगवान पूरी करते हैं, उसको ऐसे ऐसे शास्त्र देते हैं, उपनिषद ज्ञान कांड के शास्त्र, ऐसे व्याकरण से ऐसे ऐसे लोग संतों को भेजते हैं उनके पास, जिनको दिमाग को पूरी तरह से ऐसे बना देते हैं कि वो उनको अटूट श्रद्धा हो जाती है कि सत्य तो केवल निराकार ही है। वो श्रद्धा भी उनको भगवान ही देते हैं। जो लोग कहते हैं हम तो नास्तिक नहीं है, हम मानते हैं कि भगवान है,